نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ہم دیکھ چکے کہ اسلام ایک درخت کی طرح اگتا ہے. سب سے پہلے دل میں اللہ کی محبت کا بیج ڈلتا ہے. مٹی ہمارا دل ہمارا سینہ, جب اس میں ایک دفعہ اللہ کی محبت آ جاتی ہے پھر اس بیج کو پنپنے سے کوئی نہیں روک سکتا. ہم آج جس موضوع پہ بات کریں گے وہ نماز ہے, دین اسلام کا بنیادی رکن. اور رکن کیا ہے؟ یہ میرے سامنے جو میز رکھی ہے اس کی کتنی ٹانگیں ہیں؟ چار. اگر اس میں سے ایک لیگ اور ٹانگ موو کر دی جائے تو کیا یہ ٹیبل سٹیبل رہے گا؟ نہیں رہے گا. ایک اور بھی نکال دی جائے تو بھی نہیں رہے گا. اس ٹیبل کی اسٹیبلٹی کیا ہے کہ اس کی فور لیگز نمبر ایک موجود ہوں, نمبر ٹو برابر کی ہوں. اگر ایک ٹانگ ذرا سی چھوٹی اور دوسری ذرا سی بڑی کر دی جائے تو یہ ہلے گا. اسلام کی پانچ ٹانگیں ہیں, فائیو لیگز ہیں, جس کو ہم عام طور پہ کیا کہتے ہیں, فائیو پلرز آف اسلام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت روایت ہے کہ بنجل اسلام ہی علی خمس, اسلام کی بنیاد یعنی فاؤنڈیشن پانچ چیزوں میں ہے, جو شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ سے شروع ہوتی ہے, اور اس کے بعد نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, اور اسی طرح سے پھر دین کی جد و جہد پہ ختم ہوتی ہے جو ساری زندگی کی ہے. کل جب میں یہاں سے اٹھی بچی کا سوال کیا تھا کہ آپ ہمیں نماز کا طریقہ بتائیں, تو یہی ہمارا ایک کلچر ہے. آج تک جس نے بھی نماز کے موضوع پہ بات کی نا, اس نے طریقے کی بات کی عام طور پہ. اور بڑے ہی دکھ اور افسوس کے ساتھ آپ کو کہوں گی کہ نماز کے طریقے کے فرق میں 19-20 کے فرق نے آج ہماری امت کو چار بڑے بڑے گروہوں میں بانٹ دیا. کسی کا بھی عقیدہ تو چھوڑے, لوگوں کو لفظ عقیدہ بھی نہیں پتا, فقہ بھی نہیں پتا, مسلک کا مطلب بھی نہیں پتا, بس کسی کو پرکھنا ہو تو چند سوال کر لو. میں یہاں اس کورس میں آپ کو نماز کا طریقہ نہیں بتاؤں گی, یہ ایک پری میچور کوشچن ہے. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ نماز کیسے پڑھیں. میں آج آپ کو جو بات کہوں گی وہ ہے کہ نماز کیوں پڑھیں. لکھیے فرسٹ کوشچن, وائی شوڈ آئی پرے؟ آرام سے اپنے بستر پہ سو رہی تھی, خواب خرگوش کے مزے تھے, ابھی تو نیند گہری ہوئی تھی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک انسان رات کو سوتا ہے نا, حدیث کا خلاصہ ہے کہ جب ایک انسان رات کو بستر پہ جا کر سونے کی نیت سے لیٹتا ہے تو شیطان, اور شیطان کون ہے اس کا ایک دوسرا نام بھی لے لیجئے, اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ, یہ تمہارا کھلا دشمن ہے, اپیرنٹ اینیمی. یہ نہیں کہ ڈھکا چھپا. دیکھیے دشمن بہت قسم کے ہوتے ہیں, کچھ تو دوست کے روپ میں دشمن ہوتے ہیں. وہ کہتا نا کہ دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا, تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو. لیکن وہ دشمن جو سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے باہر نکل کے تو دکھاؤ گھر سے, اس کو کہتے ہیں عدو مبین, کھلا دشمن, مینیفیسٹ, کلیئر, اپیرنٹ, اوپن اینیمی. اور اس نے تو اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آدم اور اس کی ضروریت کو بہکاؤں گا. یہ سارا کچھ آپ انشاءاللہ قرآن کے سفر میں پڑھیں گے. لیکن اس وقت سمجھیے شیطان خود چوں کے آگ میں جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں پیدا کیا؟ آپ کے میرے امتحان کے لیے. آپ کے اپنے اس ملک میں بھی جو گورنمنٹ کا نظام ہے اس میں ایک حزب اقتدار ہے اور ایک حزب اختلاف, یعنی ایک اپوزیشن ہوتی ہے اور ایک ڈومیننٹ پارٹی ہوتی ہے. جب میں آپ کی عمر کی یا اس سے بھی شاید کم تھی تو میں سوچتی تھی کہ جو حکومت رن کر رہے ہیں وہ تو ہیں, تو اپوزیشن کا کیا فائدہ؟ شیطان اس دنیا کی اپوزیشن ہے, اس کا ایک اٹموسٹ گول ہے, اور اسپیشلی میرے بیٹا آپ لوگوں کی عمر میں, کیونکہ یہ وہ عمر ہوتی ہے جس میں شیطان آپ کی لگامیں اپنے ہاتھ میں لیتا ہے. اس کی پوری خواہش ہے کہ وہ ہانک کے آپ کو جہنم میں لے جائے. تصور میں لائیے کوئی بگی, گھوڑا, ٹانگا, उसके आगे एक घोड़ा लगा हुआ या दो लगे हुए हैं ना, तो उसकी लगामें आप जिसके हाथ में दे देंगे ना, वो उसको उधर मोड़ देगा। तो आज का पहला लेसन जो आपने अपने दिल पे लिखना है या अपने नोट्स में लिखना है, आज से मैं शैतान को अपना दुश्मन समझूंगा और समझूंगी। हर वो ख्वाहिश, हर वो आइडिया, चुटकला, ये करूं, बैठे बैठे आपको एकदम अजीब सी कोई फीलिंग होती है ना, समझ लें कि ये वो आ गया मेरा दुश्मन, जो मेरे घोड़े की बागे सबीलुल जन्ना से हटाकर सबीलुल गई या सबीलुल रोश से हटाकर सबीलुल गई पे ले रहा है। सूरत अल अराफ की एक आयत में आप जाके इंशाल्लाह समझेंगे इसको। चलिए, आप रात को सोने के लिए बिस्तर पे लेटती हैं, शैतान आता है और आपके बाल, ये मेरे हाथ को देखिए, गुद्दी, हदीस में जो लफ्ज है ना, ये वो है जहां अमूमन चुटिया बांधी जाती है, गुद्दी से बाल पकड़ता है। अब ये कैसे पकड़ता है? यू मैं नोना बिल्कुल बस अल्लाह के नबी ने बता दिया, हम मान गए, और बालों को पकड़ कर ऐसे नॉट्स लगाता है गिरे, और गिरहों में फूकता है। आप पढ़ते हैं ना सूरत फलक में, मिन शर्रिन नफ्फासाति फिल उकद, और गिरहों पे फूकने वालियों के शर से तेरी पनाह में, असल में उसमें एक शैतान की तरफ भी इशारा होता है और फिर जादू टोना करने वालों की तरफ भी होता है। और शैतान गिरहें लगाते वक्त क्या कहता है? सो जा, रात बड़ी लंबी है। अब यहां से जरा देखिए, सुबह से नहीं, शैतान सुबह उठ के नहीं आपकी तरह, अच्छा उठता हूँ फिर देखता हूँ आज क्या करना है, अच्छा अभी तो और सो लूँ, अच्छा 11 बजे के बाद 12 1 बजे उठ के देखते हैं क्या करना है। नो, शैतान इज अ मास्टर प्लानर, वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों प्लानिंग्स करता है। चले, बात की है तो पहले वो भी बता दूं, शैतान ने लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर ली हुई है, और वो क्या, आदम के क्यामत तक पैदा होने वाले हर बच्चे और बच्ची को मैंने अपने साथ जहन्नुम में लेके जाना है। ये है उसका पर्पज ऑफ लाइफ। इसके लिए फिर वो कही वाला मन नियन न हो, धोखे, ख्वाहिशें, आरजू, फॉल्सहुड्स इसमें डालता है। ये उसके सब ट्रैक्स हैं। ये इंशाल्लाह जब आप दौरे कुरान सुनेंगे ना तो सूरत अल अराफ में आप पढ़ेंगे। अभी इधर आ जाइए कि उसने लॉन्ग टर्म तो प्लान बना लिया अपने साथ, वो कहते हैं ना कि जहां हम रहेंगे तुम्हें भी वहीं ले जाएंगे। शॉर्ट टर्म प्लानिंग सेकेंड फेज पे, एक बच्चा जब दुनिया में आता है, अभी वो मदर वूम में है, माँ के रहम में है। हदीस से पता चलता है कि जब बच्चे की डिलीवरी का वक्त करीब आता है ना, तो शैतान वहां आकर बैठ जाता है। जो ही एक न्यू बॉर्न बेबी, जो एक बड़ा खूबसूरत सॉफ्ट इनोसेंट सा एक रुई का गाला है, दुनिया में आता है ना, तो शैतान यूं, हदीस में आता है कि उंगली से उसकी रिब में, पसली में छुपोता है। कैसे करता है? वी डोंट माइंड, अल्लाह के नबी ने जो कह दिया हम मानेंगे। अगर आपने ये जुमले मेरे सीख लिए ना, जो बात समझ नहीं आती उस पर सोचना छोड़ दे, बस आगे चले। शैतान पैदा होते बच्चे को रुलाता है। साइंटिफिकली तो हम सब जानते हैं कि बच्चा क्यों रोता है, उसकी इम्बिलिकल कॉर्ड कटती है, माँ के साथ जो उसका एसोसिएशन था कितने महीने का वो टूट रहा है। लेकिन स्पिरिचुअली वजह आज से आपको समझ आ गई कि शैतान बच्चे को किचुका लगाता है और वो वहां आकर उसको घुट्टी देता है। घुट्टी समझते क्या होता है? ठीक है, तो पैदा होते एक बच्चे के पास आकर शैतान उसको बहकाना शुरू करता है। अगला सवाल पूछे मुझसे, कब तक? चले, मेरे दुनिया में आने से पहले उसने मुझे टारगेट बना लिया। कब तक? मेरी जान जाने तक। हत्ता के हदीस से पता चलता है कि जब बंदे की जान निकल रही होती है, उस पे तकलीफ है, कभी प्यास का एहसास है, मुख्तलिफ लोगों के साथ मुख्तलिफ होगा, उस वक्त भी शैतान आकर उसको कहता है मुझे रब मान लो, मुझे सजदा कर लो, वट एवर। यानी आखिरी इम्तिहान शैतान के हाथों बंदे का कब होता है? जब उसकी जान निकल रही होती है। एक बहुत बड़े उस्ताद थे, इमाम थे, तो जब उनकी निजा का वक्त करीब आया और वो डुबकियों में थे, बेहोशियों में थे, तो उनके मुंह से कुछ आवाजें सुनी उनके पास बैठे लोगों ने। वो क्या कह रहे थे? अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। फिर बेहोश हो जाते, फिर थोड़ा सा होश आता, फिर कहते अभी नहीं, अभी नहीं। बाद में उनकी थोड़ी सी तबीयत संभल गई तो उनके बच्चों ने पूछा कि आप अभी क्या कह रहे थे? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास शैतान आया था और उसने मुझसे वही कहा जो वो सबको कहता है, कि मुझे सजदा कर लो, वट एवर। तो मैंने उसे कहा कि ऐ दुश्मन खुदा, मैं तुझे पहचानता हूँ, मैं तुझे सजदा नहीं करूँगा। तो शैतान ने उस वक्त हसरत से कहा था कि ऐ इमाम, तू मेरे हाथ से निकल ही गया। मैंने सारी जिंदगी तुझे बहकाने की कोशिश की पर तू मेरे हाथ नहीं आया। तो ये कहते हैं, मैंने उस पर उसको कहा था अभी नहीं, अभी नहीं। क्यों भला पता? क्योंकि अभी सांसों की डोर बाकी है, अभी मैं जिंदा हूँ। कहते हैं शैतान ने फिर मुझसे कहा, ए इमाम, तेरे इल्म ने तुझे बचा दिया। यानी तू इल्म वाला था ना, तो तू मेरे काबू से निकल गया। तो मैंने उस पर भी कहा अभी नहीं, अभी नहीं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु कहा करते थे कि अगर मेरा एक पाँव जन्नत में और एक बाहर हो, मैं उस वक्त तक भी खुद को जन्नती नहीं समझ सकता जब तक कि मेरा दूसरा पाँव भी जन्नत में ना जाए। तो समझ आ गया, ही इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन। आपकी मेरी जिंदगी और मौत भर का प्लानर उसने बनाया हुआ है। उसने आपको मुझे कहाँ बहकाना है, किस उम्र में बहकाना है, कैसे बहकाना है। बच्चे के पास बच्चा शैतान आता है, शैतान अपने चाइल्डहुड की रूप में आता है, उसको छोटी छोटी बातों पे तंग करता है, ख्वाबों में रुलाना, बहकाना, सिद्धें कराना। जब आप जवान होते हैं, माशाल्लाह आपकी उम्र और इससे भी ऊपर, तो इधर ख्वाहिशें आरज़ूएं। ए लमु अन्नमल हयात दुनिया, सूरत अल हदीद में जब इंशाल्लाह 27 पारे के आखिरी सूरत पे पढ़ेंगे ना, तो आप देखेंगे कि शैतान और ये दुनिया, ये सारी कहानी को अल्लाह ने डिफरेंट स्टेजेस में डाल दिया। आपकी उम्र में लहु लाए बड़ा अच्छा लगता है, लड़कों को लड़कियों का ख्याल आने लगता है, जहनों में कुछ तसव्वुर आता है, घर में अपनी जायज बीवी, हलाल बीवी मौजूद है, वो इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन एक खूबसूरत सजी समरी स्क्रीन पे, किसी बिल बोर्ड पे, या अपने साथ काम करती बच्ची, लड़की, औरत अच्छी लगती है। तो ये उसके ट्रिक्स हैं जिस पे मैं आपको हिंट दे रही हूँ। लेकिन बात यह है कि जब रात होती है, आपके अगले पूरे दिन का प्लानर, आज रात जब आप सोने के लिए जाएंगी ना, तो आपने ये मेरे जुमले याद करने हैं, बच्चों ने भी और बच्चियों ने भी और हम सब ने। शैतान पूरी प्लानिंग करेगा, आपके बालों में गिरहें लगाएगा और कहेगा सो जा, रात बड़ी लंबी है, स्लीप स्लीप स्लीप, लाइट इज सो लॉन्ग, लॉन्ग नाइट्स, व्हाटएवर। अब आप सो जाएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब फजर का वक्त करीब होता है तो इंसान उठता है। अल्लाह ने जिस तरह एक शैतान को हमारे ऊपर इम्पोज किया ना, इसी तरह हम सब के साथ फरिश्ता भी है। ये भी हमने युमिनूना बिलगैब में पढ़ लिया ना पीछे, फरिश्तों पर भी हमारा बिलीफ है। अब होता क्या है, फजर के करीब एक मोमिन, ईमान वाला, सच्चा, वादा अल्लाह से इसको पता है, जिसका अकीदा पुख्ता है, जो अल्लाह से मोहब्बत में शदीद है, उसके अंदर से एक अलार्म उठता है, उठो, अस्सलातु खैरु मिनन नौम। ये बाहर से जो मौज़िन की आवाज़ आती है ना नमाज के वक्त, ये मोमिन के अंदर से भी आती है। आप घड़ियों में अलार्म लगाते हैं? अल्लाह ताला आपकी जवानियों में बरकत दे। अभी तो मेरे बेटा आपको अलार्म लगाना पड़ता है, लेकिन जब आप इस्लाम के बाद ईमान, फिर ईमान के बाद एहसान के दर्जों पे जाएंगे ना, तो आपको अलार्म नहीं लगाना पड़ेगा। क्यों भला? मोमिन के अंदर एक नेचुरल अलार्म कॉल होता है। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजे, सूरह सजदा रात को अल्लाह के नबी पढ़ के सोते थे, उसकी एक आयत का टुकड़ा है कि इनकी करवटें बिस्तरों से अलग रहती हैं। एक ईमान वाला रात का कुछ हिस्सा आराम करने के बाद बेचैन होने लगता है कि उसके लिए इस्तराब में इत्मीनान है और इत्मीनान में इस्तराब है। मोमिन की तो अजीब कहानी है, हर लहजा है मोमिन की नई आन नई शान। लोगों को ज्यादा सो के मजा आता है, मोमिन को कुछ हिस्सा सो के उठने में मजा आता है। वो अंदर से फरिश्ता कहता उठो, ये उठ जाता है। वजू किया, एक गिरा खुल गई, अननॉट हो गई। नमाज पढ़ी, दूसरी गिरा भी खुल गई। जिक्र अजगार किए, तीसरी गिरा खुल गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस बंदे ने फजर की नमाज और उसके इर्द गिर्द की ये सब चीजें कर ली, अब सारा दिन शैतान के पंजे से वो बंदा आजाद हो गया। अच्छा आप सोचिए, आपको एक सेंस ऑफ रिलीफ मिल रहा है? बिलफर्ज किसी ने आपके दोनों हाथों को खूब अच्छी तरह टाई अप किया हो और फिर आफ्टर फ्यू आवर्स कोई खोल दे, एहसास होता है। ये है आप में से हर उसका जो कल की फजर पढ़ने के बाद आपने ज्यूम करना है, आप अपने आप को रिलैक्स फील करेंगे। आमतौर पे हमारे वीकेंड और वीकडेज की सुबह फर्क होती है। जिसने वक्त पे फजर पढ़ ली, वो शुरू में ही शैतान से जीत गया, تو کسی نے کہا کہ فجر کو مس نہ کرو کیونکہ یہ شیطان کے خلاف تمہاری پہلی جیت ہے. اب آپ ریلیکسڈ, آپ نے فرمایا کہ اس کا دل خوش رہتا ہے, ہی فیل ہیپی, اور سارا دن اس کے کام بڑے آسانیوں سے ہوں گے. یہ تو ہے آئیڈیل. اس کے برعکس کیا ہے, اللہ نہ کرے اگر ہوا, صبح آپ کی آنکھ کھلتی ہے, فرشتہ آپ کو کہتا اٹھ, ویک اپ ویک اپ ویک اپ کال, فرشتہ کہتا اٹھو اور شیطان تھبک کرتا ہے, سو جا نہیں نہیں ابھی نہیں ابھی, وہ جو جو تم پہلے وضو کرو. اور ہم اس وقت دعائیں کرتے ہیں, اللہ کرے گھر میں ایک ہی باتھ روم ہو, اور اس وقت ہم سے زیادہ کوئی فیاض اور ایثار اور شیئرنگ اس کیئرنگ والا ہے کوئی دوسرا. دل کرتا کر کے سارے لوگ وضو کر لے, میں بعد میں کروں گی, یہی 5-10 منٹ کا سونا بس, یہی تو سارے دن کی مزے کی چیزیں ہیں. آنکھ لگ گئی, سو گئے, فرشتے نے اٹھایا, آپ کے نفس لوامہ نے ملامت کی, پر اب سو گئے, نہ فجر پڑی, نہ وضو کیا, نہ ذکر اذکار کیا, حتیٰ کہ سورج نکل گیا. فرمایا سارا دن وہ بندہ وہ گرہیں ذہن میں رکھیے شیطان کی کشکنجے میں رہتا. اس کی علامت کیا, نمبر ایک سستی, لیتھارجک, لیزینس, بوجھل, امی میری سر میں درد ہو رہی ہے نا, اچھا اماں بھی کہتی اچھا بیٹا پھر سو جاؤ تھوڑا اور, چائے بنا دو, ڈسپرین دے دو, وہ شیطان کے قبضے میں آپ, جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے. جتنا زیادہ سوئیں گے اتنا بوجھل ہوں گے. آپ میں سے جو بچے چھٹیوں میں لیٹ تک سوتے ہیں کیونکہ رات دیر تک جاگتے ہیں, ان کے پورے دن کی برکت ختم ہوتی ہے, تو وہ بندہ سارا دن پھر بجھا بجھا رہتا ہے. تو پہلی بات, شیطان نے رات کو پلان کیا کہ آپ کو فجر نہیں پڑھنے دینی, آپ کیا کریں. ہمارے پاس ایک بڑا خوبصورت ٹاپک ہے, ہم فجر کے لیے کیسے بیدار ہوں. تو کوسچن واپس آ گیا, میں نماز کیوں پڑھوں, بچے پوچھتے. ایک ماں میرے پاس اپنے بچے کو لائی, بڑا پیارا گھپلا مپلا 11-12 سال کا بچہ تھا, درس میں ان کو ساتھ لے آئی. ادھر اسٹیج پہ میرے پاس آ کر کہتی ہیں آج کے درس میں نا ذرا آپ نماز پہ بات کریے گا, یہ نماز نہیں پڑھتا. یعنی شی میک ہم امبیرسڈ, مجھے بھی اچھا نہیں لگا کہ یہ کیا بات ہے کہ بچے کو شرمندہ کر کے آپ پہلے ہی مجھے اس کا دشمن بنا رہی ہیں کہ یہ آنٹی نے میرے خلاف ساری باتیں کرنی ہیں. میں نے اس کو کہا نہیں 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 یہ تو بڑا اچھا بچہ ہے, یہ ہے وہ ہے, بیٹھ جاؤ. اللہ کی طرف سے کرنا بھی تھا کچھ, ذہن میں بھی آ گیا, میں نے اس میں سورہ فاتحہ ہلکے ہلکے خلاصے کے ساتھ بتا دی. اس میں میں نے ایک لفظ بول دیا جو میں آج آپ سے بھی بولنے آئی ہوں, نماز کیا ہے, تھینک یو نوٹ ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ, او اللہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے اتنا کچھ دیا. آپ کو کل میں نے گلاس کی مثال دی تھی نا, آپ نے پانی دیا, میں کہتی ہوں شکریہ, جزاک اللہ خیر, تھینکس, میسی, تھک. یہ میسی اور تھک کیا پتا ہے آپ کو, فرینچ میں شکریہ کو کہتے ہیں میکسی, اور نارویجین میں شکریہ کو کیا کہتے ہیں, تھک تھک. اچھا اب آپ کو کچھ دے تو آپ کہتے ہیں شکریہ, تو اللہ نے کچھ دیا آپ کو, آپ کہتے ہیں ابھی تو صبح اٹھے ہی ہیں فجر کے لیے اٹھا دیا, کیا ملا مجھے ابھی, لکھیے ابھی مجھے ملا ہی کیا جس کا میں شکریہ ادا کرنے کے لیے فجر پڑھنا شروع ہو جاؤں. تو الحمدللہ الذی احیانا, بولے بات ما اماتنا ملے گی نشور, ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے زندہ اٹھایا میری موت کے بعد. ہر نیند ایک موت ہے. سورۃ النحل جب آپ پڑھیں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو پوری کہانی سنائیں گے کہ یہ جو ہم روز سوتے اور اٹھتے ہیں اور ایک موت, ان کا خوبصورت ریلیشن کیا ہے. تو میں کس بات پہ صبح اٹھ کے شکر کروں, اپنی انگلیوں پہ گنی ہے. نمبر ایک, اللہ نے مجھے زندہ اٹھایا. کتنے لوگ ہیں جو بستر پہ سوتے تو ہیں لیکن قبر میں اٹھیں گے, پھر ان کی سانس سوتے میں ختم ہو جائے گی. دوسری بات, میں اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کروں کہ جب میں اٹھی اور میں نے اٹھ کر بستر پہ بیٹھنا چاہا تو میری کمر بینڈ ہو گئی. یہ میری جو ریبس, یہ جو میرے موہرے تھے کمر کے بیک, وہ بالکل ٹھیک تھے. تیسرا شکر میں کس پہ کروں کہ جب میں نے پاؤں میں چپل پہننے کی کوشش کی تو میرے پاؤں کی انگلیاں موو کی. چوتھا شکر کیا کہ جب میں نے اٹھ کر اپنا قدم اٹھا کر واش روم کی طرف جانے کی کوشش کی تو قدموں نے میرے جسم کا بوجھ سہار لیا. پھر میں واش روم میں گئی, میں نے برش پکڑا, میری انگلیوں نے کام کیا. मैंने ब्रश पे पेस्ट लगाकर या मिसवाक पे पेस्ट लगाकर जब कोशिश की तो मेरे दांत गिरे नहीं। और किसका शुक्र चाहिए, 360 जोड़ मेरे सलामत है। मैंने अपने चेहरे को देखा, मैंने अपने आप को आईने में देखा, मेरे चेहरे के ऊपर कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो मुझे दूसरों से एम्बेरस करे। तो अल्लाह के शुक्रों की लिस्ट है, आज ही काम करिएगा, चाहे तो कल के बाद कर लें। लिस्ट डाउन कीजिए द ब्लेसिंग्स द बाउंडीज व्हाट अल्लाह सुब्हानहू हैज बेस्टोड अस फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज्जिबान, और अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को तुम छुटलाओगे। सूरत इब्राहिम में अल्लाह ताला एक सवाल करते हैं, बल्कि एक डायलॉग टाइप बात है, वइन तउद्दु नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो गिन ही नहीं सकते। तो लिस्ट आपने क्या बनानी है कि मेरे पास क्या क्या नेमतें हैं। मैंने एक बच्चे को दी, 2-4 मिनट में बना के ले आया। बच्चा इतना छोटा भी नहीं था, लेकिन 8-10 साल के बच्चे की नेमतें पता क्या है, कैंडी और सेल फोन मिल जाए तो बड़ी नेमत है ना। मैंने उसको थोड़ा एहसास दिलाया, उसने 2-4-6 और लिख ली। फिर मैंने उसको और सोचने पर दावत दी, फिर मैंने और आपके सर भी साथ थे, हमने उसे कहा कि अच्छा बॉडी के पार्ट्स पता है, कहता यस मेरी साइंस की बुक में है सारे। तो फिर उसकी लिस्ट बनाओ, आपका मैदा इस वक्त तक कितना काम कर चुका है, आपका दिल अभी यहाँ बैठे हुए टाइम में कितनी दफ़ा धड़क चुका है, आपकी पलकें कितनी दफ़ा चुपकी हैं पता है आपको। अगर ये आंखों के पलकों के पाइपर खुद हिलाने होते तो, और एक ऐसा शख्स मौजूद है रिकॉर्ड पे, मैंने उसकी स्टोरी भी शेयर की थी एक दफ़ा, वो अपनी पलकें नहीं झपक सकता, और जहर जब नहीं झपकेगा ना तो मुस्तकिल आंखों से पानी गिरता। तो जब लोगों ने एक मौके पे पूछा कि हर एक अपनी विश बताए, तो उसने कहा था कि मेरी विश है कि मुझे हाथ से अपनी पलकें नहीं झपकनी पड़े, मेरी ये खुद ब खुद झपके। यानी वो चीज़ उसकी विश है जो आपके साथ मेरे साथ ऑटोमेटिकली हो रही है। तो लिहाजा अल्लाह की नेमतों का एहसास आपको नमाज पढ़ने पे मजबूर करता है कि अल्लाह आपने मुझे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यही फलसफे अल्हम्दुलिल्लाह में, सूरह फातिहा के बगैर नमाज होती कोई नहीं, चाहे वो फर्ज नमाज हो, सुन्नत हो, नफिल हो, जनाजे की नमाज हो, वो सलातुल इस्तिस्का हो, या कोई भी नमाज हो। क्यों? शुक्र के जज्बे, शुक्र भरा दिल ही असल में वो बर्तन है जिसमें अल्लाह की बंदगी और मोहब्बत आती है। तो नमाज क्यों पढ़े, कुछ समझ आ गई बात? इसलिए पढ़ेंगे कि आप अल्लाह की मोहब्बत में चूर हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद आपका दिल करता है कि मैं कहूँ आई लव यू, जिससे भी प्यार हो दिल करता है। कितने लोग हैं जो अपनी अम्मी को, बेटियों से तो मैं अब्बू का नाम लूँ तो जल्दी बताएंगे, और मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी बेटा आपका अम्मी से ज़्यादा प्यार है या अब्बू से, घर में ही दुश्मनी शुरू हो जाती है हमारे, है ना। हम छोटे बच्चों से भी ये पूछते हैं बेटा अम्मी से ज़्यादा प्यार है तो अब्बू से, आप कहते हैं बच्चा किसका नाम लेगा जो चॉकलेट ला के देगा, अम्मियों से कम कोई होता है जिससे भी कभी आपने मोहब्बत की है। चले अम्मी अबू को छोड़े, घर में छोटा भाई बहन है, भांजा भतीजा, वो बच्चा हमसे कुछ कहता है, हम उठते बैठते उसके लाड़ क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा दिल उसकी मोहब्बत से भर चुका होता है, मेरा गुड्डू, मेरा पप्पू, मेरा मिट्टू, मेरा फलां फला फला, है ना। तो जब अल्लाह से मोहब्बत होती है ना तो दिल चाहता है अल्लाह को थोड़ी थोड़ी देर बाद की आई लव यू अल्लाह ताला, आई लाइक यू अल्लाह ताला, आई मिस यू अल्लाह ताला। इसको कहते हैं बातें करना, नमाज अल्लाह से बातें। आप बातें करते ही जाएं करते ही जाएं और अगला बंदा आपको जवाब ही ना दे, मज़ा तो नहीं आता। आप फोन उठाएं और बातें करें और आगे से जवाब ही नहीं आ रहा। हमें डायलॉग अच्छा लगता है, कुछ कहा होता हमसे, कुछ हमसे सुना होता, ऐसे ही ना। हम जब नमाज पढ़ते हैं ना तो हम अल्लाह ताला से बातें करते हैं, तो जब हम कुरान पढ़ते हैं तो अल्लाह हमसे बातें करता है। और सूरत फातिहा के साथ तो हदीस है, कसम तो सलातु बैनी व बैन अब्दी, मैंने सूरत फातिहा को अपने और अपने बंदे के बीच में रख दिया। बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह जवाब देता है हमदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। लेकिन हमें ये जवाब समझ ही नहीं आ रहे होते क्योंकि हमारे जहन में उस वक्त 10 चीज़ें होती हैं जो हमने नमाज के बाद करनी है। तो पहली बात अल्लाह के शुक्रिए के लिए, दूसरी बात हम अपने दिल के हाथों मजबूर हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद दिल चाहता है अपनी दोस्त को मिले। एक बच्चा है तो उसका क्या दिल करता है दोस्त से मिलने को, आपका क्या दिल करता है अपनी सहेली से मिलने को, और इजाज़त मिलती कोई नहीं। और अगर झूठ सच कह सुन के अम्मी अम्मी प्लीज मैं आज उसके घर चली जाऊं, फिर चली भी गई। 2-3 घंटे गुजारे तो फिर क्या होता है, आंटी का फोन कर देना अम्मी से आज स्लीप ओवर कर लूं। और यही हाल मेरा लड़कों का होता होगा, मुझे कुछ ज्यादा तजर्बा नहीं है। दोस्त के पास से उठने को दिल ही नहीं करता, तो जब आप नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह से दोस्ती है तो आपकी नमाज कैसी होगी? बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम, मैं जा रही हूँ, ये तो उस दोस्त से होगी जिससे दोस्ती ना हो। और जिससे दोस्ती हो, आपको पता है कभी हम अपनी गाड़ी स्लो डाउन कर लेते हैं, पता क्यों? कि हम सफर इतना अच्छा है कि सफर खत्म ही ना हो जाए। कभी लंबा रूट ले लेते हैं लोग, अक्सर ऐसा होता है मेरे साथ भी। वो हमने लंबा रूट इसलिए लिया है कि आपके साथ जरा ज्यादा वक्त गुजर जाए। तो भाई ये पेट्रोल जो पहले इतना महंगा है, आपकी खड़े करके बातें कर ले फिर चल पड़ेंगे। तो जब मोहब्बत होती है ना फिर नमाज लंबी होती है। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशना। और हकीकत है कि अगर आपका ईमान बिल्ला यानी अकीदा दुरुस्त हो तो आपकी नमाजें जिंदा होंगी। आज हमारी नमाजें बेरूह हैं, हमें दूसरों के कहने पे पढ़नी पड़ती है। एक आलिम है, नाम नहीं लेती, फिर आपको उनके बचपन की बात पता लग जाएगी। वो कहते हैं कि जब मैंने नमाज शुरू की थी 8-10 साल की उम्र में जो लोग करते हैं, तो मेरी नमाज क्या थी, 2 रकत नमाज बराए अब्बा जान, क्योंकि हम अब्बा जान के कहने में पढ़ते थे। हम भी ऐसे थे, मैं भी ऐसी थी। हम में से कोई भी पैदाइशी तौर पे अल्लाह से डरने वाला मुत्तकी मोमिन मोहसिन नहीं पैदा हुआ, वी हैव टू। तो आज से अपनी नमाजों के पीछे लगे, प्रॉमिस कीजिए खुद से कि अल्लाह मैं आपके बारे में जानूंगी, आपकी नेमतों को सोचूंगी। किताबें पढ़ने से ज्यादा अपने आप को पढ़िए, आईने में खुद को देखकर सोचिए। अगर आपकी ये नाक की जगह थोथनी होती, आपकी सिर्फ एक आंख होती बड़ी और दूसरी छोटी होती, किसी को शक्ल ना दिखाते। ये जो आप नमाज में खड़े होते हैं, अब देखिए नमाज के एक्शंस को भी थोड़ा सा देखिए। अल्लाह अकबर, ये क्या है, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट। और ये जो आपने किया ना यूं, अल्लाह अकबर, यानी सारी दुनिया पीछे और मैं अपने रब के आगे। फिर आप देखिए आप ये अपने हाथ यूं, और आपकी नजरें सजदे की जगह पे होती हैं। बिलीव में इतना प्यार आता है उस बंदे को जिसका ये पोस्चर हो, जैसे एक मुजरिम कटहरे में खड़ा हुआ है। कभी कभी छोटे छोटे बच्चे घर में छोटी मोटी तोड़ फोड़ तखरीबकारी करके तो आके माँ के सामने खड़े हो जाते हैं, और फिर आके कहते हैं मैंने कुछ किया तो नहीं, मैंने तो नहीं तोड़ा, मैंने तो नहीं किया। माँ को समझ आ जाती है ये कुछ करके, बच्चे कुछ गड़बड़ करके खड़ा हो ना माँ को पता चलता था ये कोई गड़बड़ करके खड़ा है। बस आप भी ऐसे ही खड़े हुआ करें जोहर पे, अल्लाह मुझसे फिर गड़बड़ हो गई, अल्लाह जी मुझसे होगी। कल आप में से एक बच्ची ने इतना प्यारा सवाल किया, मैं सारा वक्त उसके नशे में रही कि मुझे गुनाह करने के बाद क्यों एहसास होता है कि तौबा करूं, मुझे गुनाह से पहले क्यों नहीं हो जाता। तो मैंने आपको यही कहा था ना बेटा कि वो वक्त भी आएगा, अगर ये गिल्ट पैदा हो गया ना तो इंशाल्लाह ये बेहतर होगा। तो दिन में 5 बार आप नमाज के लिए जब खड़े होंगे ना, तो एक और रीजन ले लीजिए पढ़ने की, हैं तो बहुत सारी, आपके मेरे गुनाहों की धुलाई। आप और मैं भी बाहर से आए और आप में जिसने वॉक की होगी पाँव पे कुछ मट्टी लगी लग जाती है ना, कहीं हो सकता है कीचड़ हो तो कुछ कीचड़ भी लग जाएगा। गर्मी में पैदल आएंगे तो पसीना आएगा, घर जाएंगे तो शावर ले लेंगे। नमाज इज शावर, लिखिए नमाज रूह का गुसल है। जैसे हमारा जिस्म गंदा होता है तो हम पानी से गुसल करते हैं ना, तो हमें अल्लाह ताला फीलिंग दे देता है अच्छे होने की। नमाज हमारे 2 नमाजों के बीच के गुनाहों की माफी है। हमारे जो वाइज है वो तो अंदर से खुश हो गए, जो चाहो करो फिर नमाज पढ़ लेंगे। आप भी ऐसी सोच रही होंगी, है सवाल जवाब दो इसका। किसी का ये क्वेश्चन है कि जब फजर से जोहर, जोहर से असर, असर से मगरिब, मगरिब टू ईशा और ईशा से फजर, एक नमाज दूसरी नमाज के बीच के गुनाहों की माफी है, तो कितना अच्छा हमें कोड वर्ड मिल गया, जो मर्जी करो जाके नमाज पढ़ लेंगे, मजे की बात है। तो जवाब दो, पहली बात याद रखिए आपने एक नमाज शऊर के साथ पढ़ ली, आपका दिल ही नहीं गुनाह में लगेगा, क्योंकि कुरान का एक इफेक्ट है। जैसे आप एंटीबायोटिक खाते हैं तो उसका इफेक्ट होता है ना, और वो इफेक्ट क्या है, 21वें पारे की पहली दूसरी 2 आयतों को जोड़ लें, इन सलात तनहा अनिल फख्शाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई और मुनकर से रोकती है। वला जिक्रुल्लाह अकबर, अल्लाह का जिक्र बड़ी चीज है। एक तारीख में वाक्य आता है, हमारे बच्चों को तो बड़ा ही अच्छा लगेगा। मैं तस्वुर में देख रही हूँ वो कैसी भीगी भीगी सी मुस्कुराहट से मेरी बात सुनेंगे और एक दूसरे को कनखियों से भी देखेंगे जब मैं सुनाऊंगी, और हमारी बच्चियां देखेगा भी शर्माएंगी और लजाएंगी। एक लड़का था, उसको एक लड़की से मोहब्बत हो गई उसके ख्याल में, वैसे वो मोहब्बत नहीं होती। अब वो उस लड़की के पीछे लग गया, उसकी गली का चक्कर, फिर कोई गाने शाने भी होंगे। देखा, आपके चेहरे बता रहे हैं मुझे। लड़की समझदार थी, उसको फील हुआ कि समथिंग इज रॉन्ग। उसने किसी भी तरह पैगाम भेज दिया कि तुम हजरत उमर के पीछे रजी अल्लाह अन्हु, उस वक्त खलीफा थे, और उस दौर में जो खलीफा थे ना वही इमाम मस्जिद होते थे। तसव्वुर लाएं जरा आज का, पता नहीं मस्जिदों का क्या हाल हो जाए। खैर, कहा कि तुम 8 दिन तक हजरत उमर फारूक के पीछे नमाजें पढ़ लो जमात से, फिर जो तुम्हारी ख्वाहिश होगी वो उस पर गौर करेंगे। उसने कहा ये कौन सी बात है, 8 दिन की बात, अभी आता हूँ, एक पैकेज लगवाना है बस 8 दिन का। एक दिन गुजरा, अगर उसकी गली के 4-5 चक्कर थे ना तो अगले दिन 3 चक्कर लगे, और जब दूसरा दिन गुजरा तो एक ही रह गया चक्कर। तीसरे दिन लड़का गायब, वो कहते हैं ना गधे के सर से सींग गायब तो बच्चा गायब। काफी अरसे के बाद वही लड़का एक बड़े खूबसूरत गेटअप में, यानी जिसका ब्रांड सुन्नत थी, नजर आ गया। पूछा कि ये वही लड़का है ये जो तुम वो फलां गली के चक्कर में आते थे, भाई ये तुम वो किधर गए? कहता है बात सुनो, अल्लाह को पसंद नहीं है कि एक गैर महरम, यानी एक लड़का लड़की या औरत मर्द कोई ऐसी बात तन्हाई में करें, जल्दी बात करो और आगे जाओ। कहने लगी तुम्हें क्या हुआ, तुम तो मेरी गलियों के चक्कर लगाते थे। तो उसका जवाब उसने दिया कि हजरत उमर के पीछे की 8 दिन की वो 40 नमाजों ने मेरे दिल की दुनिया बदल दी, तो अब काम है तो जाओ बात करो, मुझे पसंद नहीं आ रहा कि तुम मेरे से बात कर रही हो। यह तनहानी, यकीन करें कि मैं तो अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि मैं आपसे कोई 20-25 साल पहले जवान हो गई थी। आज के जवानों के साथ मेरी दिल की हमदर्दी है, आप जिस फितनों के दौर में आज हैं, और ये जो भी छोटी पौध आगे आएगी जिसमें वो आएगी, अगर आपने मोहब्बत वाली नमाज ना सीखी, प्यार वाली नमाज ना सीखी, ये बाहर के फितनों में आप बह जाएंगे। अभी भी हालात को ज्यादा अच्छे नहीं है। नमाज एक खूंटी है जो आपको बांधेगी फितनों के खिलाफ। करें गुना, नमाज नहीं छोड़नी, अल्लाह आपको पाक कर देगा इंशाल्लाह। नमाज का फारात है, जैसे दिन में 5 दफा कोई गुसल करे तो उसके जिस्म में मैल रहता है, नमाज से थोड़ा सा ऊपर आते हैं। जब नमाज पढ़ ली आपने तो आपको क्या मिला, नमाज का समरा यानी फ्रूट ऑफ नमाज क्या मिलता है, बंदा गुनाहों से पाक हो जाता है, सिन प्रूफ होते हैं गुनाह, फिर धो लिया होगा ये सारी जिंदगी रहेगा। आगे चलते हैं रोजे, रोजा मेरे कहने पे आज आप बच्चे नियत करें कि हम नमाज नहीं छोड़ेंगे, वादा करते हैं। आप सब ऊंची आवाज से अपने आप से कहें, मुझे कुछ ना कोई सुनाए, ना मेरे लिए करें, ना अपने टीचर्स के लिए। ये जमीन जिस पे आप इस वक्त बैठे हैं, ये जगह आपके लिए गारे हिरा बन जाएगी। नियत करें कि मैंने नमाज नहीं छोड़नी, इसके लिए कोशिशें करें, बडीज बने, एक दूसरे को बताएं, घर में अम्मी से कहें, अब्बू से कहें। और हमारे बेटे अगर इस उम्र में मस्जिद की नमाज के आदि बन गए तो फिर सत्ते खैर है, फिर वो अरबी के इंग्लिश के जो मर्जी मुख्तलिफ लफ्ज आपको कोई ABC LGB और जो मर्जी पढ़ा दे, इंशाल्लाह आप खड़े रहेंगे। वादा करते हैं वक्त से पहले, और इसका सिंपल तरीका 15 मिनट पहले अलार्म लगा लीजिए, ठीक है, तो आपकी जवानियां पाक हो जाएंगी, आप बड़े गलत तजुर्बों से बच जाएंगे, आप क्यामत के दिन की उस शर्मिंदगी से बच जाएंगे जहां सिर्फ एक सवाल आउट ऑफ 5 क्वेश्चन अनजवाब ही फीमा बिलाहु होगा, जवानी कहाँ गुजारी इसका तो जवाब दो, क्योंकि तर जवानी तौबा कर दन शेवाए पैगंबर, जवानी में तौबा करना नबियों का शेवा है। जवानी में मस्ती को बड़ा दिल करता है, ऐसे और कुछ नहीं तो किसी का टायर की हवा निकाल दी, लेकिन जवानियों को पाक रख लें, अल्लाह आपसे बहुत बड़े काम लेगा। अगली चीज जिस पे आपने अपने आप को इंशाल्लाह करना है वो रोजे हैं, नफिल रोजों की आदत डाली है। अल्लाह के नबी सल्लम के दौर में भी कुछ ऐसे लोग थे आप जैसों की तरह, जिनके माँ बाप की नजर में आप अभी बच्चे हैं, आप अभी अपने पाँव पे नहीं खड़े हुए, और माँ बाप उनकी शादियां नहीं करते। हालांकि वो बेचारा दोनों पाँव पे खड़ा हो के दिखाता है कि मामा मैं 2 साल की उम्र में अपने पाँव पे खड़ा हो गया था, और बच्चियां भी। लेकिन हमारा फैमिली सेटअप इतना अजीबो गरीब है, उनको वो 20-22 साल के बच्चे भी अभी बेबीज लगते हैं। روزہ آپ کو بچائے گا. اللہ کے نبی ایک موقع پہ لوگوں کے پاس سے گزرے اور آپ نے کیا فرمایا, یا معاشر الشباب, اے جوانوں کے گروہ روزہ رکھو کیونکہ یہ تمہاری نگاہوں کو جھکائے گا, کیونکہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقویٰ پیدا ہوگا, آپ کی نظریں جھکیں گی. تو ابھی تو ویسے بھی فرض روزے آنے والے ہیں نا, ابھی سے رمضان تک آپ لوگ کوشش کیجئے پچھلے روزے میک اپ کر لیں. انشاءاللہ یہ دو چیزیں آپ کو باندھ دیں گی. باقی رہ گی زکوٰۃ اور باقی چیزیں جن کو ہم نے دیکھا, حج عمرہ. دعائیں کریے, نیت بھی کیجئے کہ جب اللہ ہمیں صاحب مال کرے گا, امی ابو سے پاکٹ منی لینے کی بجائے ہم خود کمانے لگیں گے, تو ہم نے انشاءاللہ اس کو لے کے آنا ہے. تو اس چیز کے ساتھ آج جس چیز پہ میں آپ کو فارغ کروں گی وہ کیا ہے, کہ ہم اپنے آپ کو نماز اور روزے کے ساتھ جوڑ لیں گے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.